था, रूप वही रूप नया।
गाथा में आप सुन रहे हैं गोविंद शर्मा की लिखी कहानी मुकदमा हवा पानी का। इस कहानी के पात्र हैं महाराज, मंत्री, हवा और पानी बने दो बच्चे और कुछ लोग। महाराज का दरबार। महाराज सिंहासन पर बैठे हैं, एक तरफ मंत्री और दरबारीगण बैठे हैं, उनके सामने दूसरे लोग बैठे हैं। महाराज,
मंत्री जी शिकायत करने वाले लोग आ गए हैं।
मंत्री खड़े होते हुए, हाँ महाराज। महाराज,
जिनके बारे में शिकायत आई है क्या उन लोगों को भी यहां बुला लिया गया है?
मंत्री, हाँ महाराज, आज सब शिकायतें हवा और पानी के बारे में हैं। वे पास के कमरे में बैठे हैं।
महाराज, ठीक है, मुकदमे की कार्रवाई शुरू करें, पहले पानी को बुलाया जाए।
मंत्री इशारा करते हैं, भीगे कपड़े पहने एक लड़का हाजिर होता है। उसके कपड़ों के भीतर छिपे टेप रिकॉर्डर से पानी के बहने की कलकल आवाज सुनाई देती है। पानी। महाराज की जय हो।
महाराज, पानी, तुमसे इन लोगों की शिकायत है, यदि शिकायत सच साबित हो गई तो तुम्हें दंडित किया जाएगा।
पानी, महाराज, मुझे नहीं मालूम कि ये लोग मुझसे क्यों नाराज हैं, मैं एकदम निर्मल हूं महाराज।
मंत्री, महाराज, लोगों की पहली शिकायत यही है कि पानी अब निर्मल नहीं रहा है, नदियों और नहरों में बहते समय गंदगी और बीमारियां अपने साथ बहाकर सब जगह पहुंचा देता है।
पानी, महाराज, ये लोग पहले की तरह पानी की रखवाली नहीं करते हैं, पशुओं को जोहड़ के भीतर तैरने देते हैं, पशु अपनी गंदगी तालाब में छोड़ जाते हैं, गांव की दूसरी गंदगी भी तालाब में फेंक दी जाती है, नदियों में कारखानों की गंदगी और शहर के गंदे नाले का पानी छोड़ा जाता है। महाराज, मैं अपने आप गंदा नहीं होता।
महाराज, भाइयों, आपके पास इसका क्या जवाब है?
लोग आपस में फुसफुसाकर बातें करते हैं, फिर उनमें से एक बोलता है, महाराज ये तो मान लिया, पर कहीं बरसना कहीं नहीं बरसना, ये तो इस पानी की मनमानी है ना?
पानी,
नहीं महाराज, मुझ पानी की मर्जी कहाँ चलती है, जिधर ढलान हो, जहां का माहौल अनुकूल हो, वहां मुझे जाना ही पड़ता है। इन लोगों ने पहाड़ियों को काटकर वहां मैदान बना दिए हैं, वन नष्ट कर दिए हैं, ऐसी जगह बरसात कैसे हो सकती है? वर्षा ना होने के लिए भी यही लोग जिम्मेदार हैं। दूसरा, अधिक वर्षा के लिए कौन जिम्मेदार है?
पानी,
जो बादल बना है वो तो बरसेगा ही, फिर जहां वर्षा का पानी बहना चाहिए, जहां नदी बहनी चाहिए, जहां मेरे सुस्ताने की पुरानी जगह होगी, वहां तो मैं जाऊंगा ही। लोगों ने ऐसी जगहों पर घर बना लिए हैं, ऐसे घर तो डूबेंगे ही, मैं इनकी बनाई गलियों नालियों में घूमता रहूं, ये कैसे संभव है? लोग फिर आपस में बातें करते हैं। तीसरा, महाराज, हमारा गांव सदियों से ऊंची जगह पर बसा हुआ है, हमने नीची जगहों पर कोई घर नहीं बनाया है, फिर भी इस बार हमारा गांव बाढ़ का शिकार हुआ है। महाराज, पानी आंखें मूंद कर चलता है।
पानी,
नहीं महाराज, मैं देखकर चलता हूँ, तभी तो ढलान की तरफ जाता हूँ, कभी ऊंची जगह पर चढ़ने की कोशिश नहीं करता हूँ।
ये लोग जानते हैं कि इनके गांव के पास एक पहाड़ है। पहले उस पर बहुत से वृक्ष होते थे। पहाड़ से उतरते समय मैं वृक्षों के बीच में से होकर आता था और सीधे पानी के रास्ते यानी नदी नालों में बहता था। अब लोगों ने पहाड़ से वृक्ष साफ कर दिए हैं। मैं वहां से उतरता नहीं हूँ, बल्कि लुढ़कता हुआ नीचे आता हूँ। मुझे खुद पता नहीं चलता कि नीचे मैं कहाँ गिरूंगा। महाराज, और कोई शिकायत?
कोई नहीं बोला।
महाराज, तुम्हारी चुप्पी इस बात की गवाह है कि तुमने भी इन कारणों को मान लिया है। तुम्हारा भला इसी में है कि अपनी गलतियां सुधारो और पानी को निर्मल तथा उपयोगी रहने
दो। दूसरा दृश्य।
वैसा ही दरबार, इस बार पानी की जगह हवा है। पर्दे के पीछे रखे पंखे की हवा सीधे उस पर पड़ रही है। साए साए की हल्की आवाज हो रही है।
महाराज,
मंत्री जी, हवा के प्रति लोगों की क्या शिकायतें हैं?
एक आदमी आगे आता है।
आदमी, महाराज की जय हो। महाराज, आजकल हवा में खुशबू नहीं होती, ये हर समय हमारे यहां बदबू फैलाती है।
हवा,
महाराज, ये आरोप झूठा है। बदबू के कारण तो मेरा जीना कठिन हो गया। अपने आप में मेरे पास ना तो खुशबू है ना बदबू। पहले ऐसा नहीं होता था, पर आजकल ये लोग मरे हुए पशु पक्षियों को यहां वहां डाल देते हैं। उनके कारण मैं बदबू वाली हो जाती हूँ। इनके कारखानों से निकली गंदगी और गैसें मुझ में घुल जाती हैं, और ये बदबू दूर तक फैलती रहती है। मुझे याद है कि एक बार भोपाल के एक कारखाने से निकली जहरीली गैस मुझ पर सवार होकर दूर दूर तक फैल गई थी, और कितने ही लोग मौत के मुंह में चले गए थे। इन लोगों से कहिए कि ये गंदगी के ढेर ना लगाएं, सफाई रखें।
आदमी,
लेकिन तुम अचानक चलकर हमारी आंखों में मिट्टी डाल देती हो, सब कुछ तबाह कर देती हो, क्या इसका हमने तुम्हें न्योता दिया था?
हवा,
चलना मेरा काम है, आप कहते हो तो लो, मैंने चलना बंद कर दिया।
हवा का चलना बंद हो जाता है, सभी घुटन महसूस करते हैं।
मंत्री, अरे हवा रानी, नाराज मत हो, धीरे धीरे तो चलो, सांस लेना मुश्किल हो रहा है।
हवा चलने लगती है।
महाराज, हवा के बारे में और कोई शिकायत?
औरत,
महाराज, हम अपने घर साफ सुथरे रखते हैं, पर हवा आंधी बनकर आती है और हमारे घर रेत और कूड़े से भर देती है। हवा तो बहे पर आंधी क्यों?
हवा,
महाराज, आंधी से इनका मतलब मेरे तेज चलने से है। वैसे तो मैं हर समय बहती रहती हूँ, पर इन्हें जब गर्मी लगती है तो पंखा चलाकर मेरी गति बढ़ा लेते हैं। उसी तरह जब भी हवा कम होती है मैं तेजी से वहां जाती हूँ। जब मैं तेजी से चलती हूँ तो रेत, मिट्टी, कूड़ा आदि जो भी हल्की चीजें मेरे रास्ते में होती हैं मेरे साथ उड़ने लगती हैं। ये अपने घर और दुकान साफ करके कूड़ा घर के आसपास गली में या सड़क पर डाल देते हैं। कई बार गांव के बाहर कूड़े के ढेर लगा देते हैं। इनका फेंका कूड़ा ही वापस इनके घरों में जाता है। महाराज, लोग अपने गांव या शहर में पॉलिथीन की थैलियां सड़कों पर फैला देते हैं। वे मेरे साथ उड़कर खेतों में फैल जाती हैं और फसलों को नुकसान पहुंचाती हैं। इससे मेरा मन बड़ा दुखी होता है।
महाराज, मैंने सबकी बात सुनी है। लोग हवा से दुखी तो हैं, पर कसूर हवा का नहीं है। लोगों को सफाई की आदत अपनानी होगी, तभी हवा दूषित होने से बचेगी। हमें चाहिए कि हम हवा और पानी को अपना दोस्त मानकर उन्हें नुकसान न पहुंचाएं।
इसमें ही हमारा भला और बचाव है। लोग हवा पानी के प्रति दोस्ती का भाव दिखाते हुए चले जाते हैं। अभी आप सुन रहे थे गोविंद शर्मा की लिखी कहानी मुकदमा हवा पानी का। गाथा में इसे आपके लिए प्रस्तुत किया शिवानी आनंद ने।